भागवत सार की श्रृंखला में आठवें स्कंद के 11वें और 12वें अध्याय पर चर्चा है। इसका एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। माया भीर उत्सी, आप लोग कैसे कहोगे? लिखा हुआ नहीं है ना बोर्ड, ऐसे सुन के बोलोगे? ओके, ध्यान से सुनना पड़ेगा। आरु रुक्षंति माया भी उत्सी सृप्संति ये दिवं। ठीक है, हम ही पढ़ लेते हैं। तांदस्युं विधोनं ज्ञान पूर्वस्मच्चा पदा दधाः। शब्दार्थ दोहराए, आरु रुक्षंति व्यक्ति जो उच्च लोकों को जाना चाहते हैं, ये तो सरल है, आप लोग बोल सकते हैं। माया भी तथा कथित योग शक्ति या विज्ञान के भौतिक विकास द्वारा उत्सी सृप्संति या ऐसे झूठे प्रयासों से मुक्त होना चाहते हैं, ये जो व्यक्ति दिवं स्वर्गलोक को तान ऐसे लफंगों तथा गुंडों को दस्युन ऐसे चोरों को विधुनोमी मैं नीचे गिराता हूं, अज्ञान मूर्ख पूर्वस्मात पिछला च भी पदात पद से अधः नीचे। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूं। तात्पर्य, विभिन्न लोगों के लिए निसंदेह भिन्न भिन्न लोक हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था। सतोगुणी पुरुष उच्चतर लोकों को जा सकते हैं, किंतु जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, उन्हें उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिवं शब्द उच्च लोकों का घोतक है जो स्वर्गलोक कहलाता है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्ध जीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्च लोकों को जाने का प्रयास करे तो वह उसे नीचे धकेल दे। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोगों द्वारा कृत्रिम यांत्रिक साधनों से स्वर्गलोक जाने का प्रयास है, यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा, जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्च लोकों को जाने का प्रयास करता है, उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नरक लोक में भेज दिया जाता है। उच्च लोकों में जाने के लिए पर्याप्त सद्गुण चाहिए। तमोगुणी पापी पुरुष तथा मदिरापान मांस भक्षण तथा अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारत्कण्ठयोस्फुरा।
हरे कृष्ण। तो ये अंतिम दो अध्याय हैं अब 11वां और 12वां इस समुद्र मंथन के प्रसंग के। और अभी तक हम लोग सुन चुके हैं कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत प्रकट हुआ, देवताओं को भगवान ने दिया मोहिनी रूप में, और फिर दानव बड़े दुखी हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने आक्रमण किया। और फिर जब देवता हारने लगे, भगवान ने और एक अवतार लिया और उस अवतार में फिर उन्होंने देवताओं की रक्षा की। तो अब जब युद्ध चल रहा है, देवताओं की रक्षा कर दी, देवताओं को पुनः जीवन प्रदान कर दिया भगवान ने, तो अब इंद्र, इस अध्याय का शीर्षक है कि इंद्र द्वारा असुरों का संहार। तो अब इंद्र बड़े शक्तिशाली हो गए, अब उन्होंने जोर से अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करना शुरू किया। इंद्र आक्रमण करने लगे और उस समय बलि महाराज सामने आए। तो बलि महाराज, जिन्होंने अभी अभी मायावी शक्तियों को प्रकट किया था, तो अब इंद्र उनको डांटने लगे या उनकी निंदा करने लगे, कहने लगे कि आप हमें मायावी शक्ति दिखा रहे हो जबकि हम मायावी शक्तियों के स्वामी हैं। तो ये जो आपने प्रकट किया, लेकिन उस समय इंद्र भूल गए थे जब बलि महाराज ने मायावी शक्तियां प्रकट की थी, तब तो भगवान को याद कर रहे थे। तो अब वो उनको कहने लगे और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने वज्र से आपको समाप्त कर देता हूं। तो जैसे ही वज्र की बात आई, सारे असुर हाहाकार करने लगे, क्योंकि वज्र के सामने बलि महाराज भी टिक नहीं सकते हैं। तो अब सब जान गए कि अब तो बलि महाराज की मृत्यु निश्चित है। तो उस समय बलि महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, सामने मृत्यु है। जैसे वृत्रासुर, वो जानता था कि इस वज्र से मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो बिल्कुल विचलित नहीं था क्योंकि भगवान का भक्त है। ऐसे ही बलि महाराज भगवान के भक्त हैं, इसलिए बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उल्टा इंद्र को कहने लगे कि इंद्र, जय और पराजय, मृत्यु और जीवन व्यक्ति को अपने भाग्य से मिलता है। वो तो जो है वो मिलने वाला है। अगर हमारे भाग्य में पराजय लिखी है तो वैसे भी हमें मिलेगी, लेकिन एक चीज जान लो कि ये सब क्षणिक है। तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो कि थोड़ी बहुत तुम्हारी विजय हो रही है, तो तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चीजों से विचलित नहीं होता। ये भक्ति के सिद्धांत हैं, भगवत गीता के सिद्धांत हैं, जिन्हें भगवान ने प्रस्तुत किया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमः पायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। भगवान इनको प्रकट कर रहे हैं कि ये जो भक्त होते हैं या जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वे कभी भी विचलित नहीं होते हैं। सुख दुख, जय पराजय, अगर कोई जय हो जाए, विजय में बहुत सुखी हो जाए, जश्न मनाने लगे, और वही दूसरी ओर जब पराजय हो जाए तो दुख हो जाए, हाय हाय करे, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति बलि महाराज के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब तो कर्म से आना है। अर्थात बलि महाराज एक दृष्टि से इंद्र को समझा रहे हैं कि इंद्र, तुम अभी भी कर्मों के नियम में बंधे हुए हो, बुद्धि नहीं है तुम्हें। भगवान कितनी बार प्रकट हो गए तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम अभी तक उस जय और पराजय के ऊपर नहीं गए हो, अभी तक उसी में फंसे हुए। दूसरे शब्दों में बलि महाराज ये बता रहे थे इंद्र को, जैसे वृत्रासुर बता रहे थे इंद्र को, कि तुम्हारी दरअसल पराजय हो रही है, मैं मरकर भी विजय प्राप्त करूंगा और तुम जीत कर भी पराजित होगे। यही इस जगत में सच्ची विजय और पराजय है। इस जगत की विजय, जैसे किसी चीज को प्राप्त कर लेना, किसी सेना को परास्त कर देना, किसी देश का राजा बन जाना, कोई धन कमा लेना, कोई बहुत बड़े उद्योगपति बन जाना, इसको आज के समय में सफलता माना जाता है, विजय माना जाता है। ये सफल वो व्यक्ति है जिसको कुछ प्राप्त हो गया, विजय हो गई जिसकी, लेकिन वो सच्ची सफलता नहीं है। सच्ची सफलता वो है जो बलि महाराज प्रकट कर रहे हैं, कि भले वो जानते हैं कि अब वज्र के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी विचलित नहीं है, क्योंकि वो स्वीकार कर रहे हैं जो है कर्म के अनुसार, भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलना है। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। जय और पराजय ये क्षणिक है, लेकिन हमारी चेतना, भगवत चेतना, ये शाश्वत है। इसलिए भगवत चेतना को जागृत करना हर अवस्था में, जैसे बलि महाराज, ऐसी स्थिति जहां बस अब वज्र चलने वाला है, मृत्यु होने वाली है, और सारे दानव हाहाकार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बलि महाराज मारे जाएंगे, उस समय में भी बलि महाराज बिल्कुल चिंतित नहीं है। कर्मों की बात कर रहे हैं, भाग्य की बात कर रहे हैं, इंद्र को डांट रहे हैं कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, और फिर ये कहने के बाद ये जानते हुए कि वज्र है इंद्र के हाथ में, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, उन्होंने तीर चलाए इंद्र के ऊपर, इंद्र के ऊपर उन्होंने तीर चलाए, लेकिन इंद्र ने उसको काट दिया, भाला फेंका इंद्र ने, काट दिया वज्र से, और फिर बलि महाराज के ऊपर वज्र से प्रहार किया, जिससे बलि महाराज जो अपने विमान में थे वो नीचे गिर गए विमान से। तो जैसे ही वो गिरे वज्र लगकर सारी जगह हाहाकार हो गया, और बाकी जो असुर थे जो बलि महाराज के मित्र इत्यादि थे तो वे बड़े क्रोध में आ गए। तो उनमें से एक था जंभासुर, तो उसने आकर आक्रमण किया इंद्र के ऊपर, और बड़ी तीव्रता से आक्रमण किया, इतना तेज आक्रमण था, ऐसे कहते हैं कि जंभासुर शेर के ऊपर बैठकर आया था और इंद्र हाथी पर बैठे हुए थे। आक्रमण किया इतना तीव्र कि ऐरावत नीचे गिर पड़ा, ऐरावत को चक्कर आ गए, वो भूमि पर गिर गया, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ। हालांकि ऐरावत कोई साधारण हाथी नहीं है, हमने सुना है कि वो चरण समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, बहुत विशेष वाहन है इंद्र का, लेकिन वो भी गिर पड़ा। तो फिर तुरंत इंद्र के जो सारथी हैं मातली, वो उनका रथ लेकर आ गए और इंद्र फिर रथ पर बैठकर युद्ध करने लगे, लेकिन जंभासुर और तीव्र था, उसने रथ को भी तहस नहस कर दिया, बड़ी तीव्रता से युद्ध कर रहा था जंभासुर। तो उस समय उनके इस युद्ध को देखकर इंद्र ने अपने वज्र को पुनः चलाया और जंभासुर को मार डाला, जंभासुर की मृत्यु हो गई। तो जब ये समाचार फैला तो तीन बहुत शक्तिशाली असुरों ने एक साथ इंद्र पर आक्रमण किया, बल, पक और नमुची। ये तीन राक्षसों ने एक साथ दैत्यों आक्रमण कर दिया, तो तीनों अलग अलग तरह से क्षति पहुंचाने लगे। और अब और ऐसा समय आया कि उन तीनों ने इंद्र को पूरा अपने बाणों से घेर दिया, इंद्र छुप गए, दिखाई नहीं दिए। तो जितने भी देवता थे वो बड़े दुखी हो गए कि अरे ये क्या हुआ, इंद्र कहाँ चले गए। लेकिन इंद्र फिर बाहर आए और फिर उन्होंने वज्र से पक और बल इन दोनों को मार दिया। और फिर नमुची जो युद्ध कर रहा था तो उसकी ओर भी वज्र चलाया, ये वज्र सीधा गया नमुची के गले पर, लेकिन नमुची को कुछ नहीं हुआ। ये बड़े आश्चर्य की बात थी इंद्र के लिए, बलि महाराज गिर गए, जंभासुर गिरा दिया, पल बक सब मर गए, लेकिन नमुची को लगा और कुछ नहीं हुआ, ये वापस आ गया इंद्र के पास। इंद्र बड़े आश्चर्य में हो गए, पहली बार ऐसा हुआ कि इंद्र का वज्र विफल हो गया, शरीर में खरोंच भी नहीं ला पाया वज्र। तो बड़ा आश्चर्य हुआ इंद्र को, कह रही ये वही वज्र है जिसको वृत्रासुर को मार दिया था मैंने, मैंने पूर्व काल में बड़े बड़े जो पर्वत थे उनके पंख काट दिए थे। दरअसल हम लोग जो पर्वत देखते हैं बड़े बड़े, ऐसा वर्णन है कि पहले इनके पंख हुआ करते थे, और ये जैसे पक्षी उड़ते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। हम लोगों के लिए तो बड़े आश्चर्य की बात है ना, ऐसे सोच भी नहीं सकते, अचानक आप देखो पर्वत उड़ रहा है तो आपको लगेगा शायद मैं नींद में हूं या कुछ हो गया है, किसी ने कुछ जादू कर दिया है। लेकिन ये वर्णन है कि पहले उड़ा करते थे, और क्योंकि जब वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जब बैठते थे तो बहुत सारे लोग मर जाया करते थे, बहुत प्राणी मर जाते थे, तो उनको बचाने के लिए इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काट दिए। तब से पर्वतों के पंख नहीं होते हैं, पर्वत एक ही जगह रहते, उड़ नहीं सकते। तो इंद्र सोचने लगे कि मैंने पूर्व काल में वृत्रासुर को मारा, इतने बड़े बड़े पर्वत थे उनके पंखों को काट दिया, लेकिन अब ये लगता है कि ये बेकार हो गए, इसकी इसकी शक्ति खत्म हो गई। जैसे होता है ना कि कोई चाकू चलाते हैं तो कई बार चलाने के बाद फिर वो चाकू की धार खत्म हो जाती है, उसको फिर से तेज करना पड़ता। तो इंद्र ने सोचा कि ये तो बेकार हो गया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। मगर इंद्र भी आश्चर्य करे कि अब नमुची को मारे कैसे, क्योंकि वो तो आक्रमण कर रहा था। तो जब ये इंद्र सोच रहे थे, दुखी हो गए थे, सोच रहे थे कि अब इसे फेंकना पड़ेगा, ये वज्र बेकार हो गया, काम का नहीं रहा, अभी एक जरा से राक्षस को नहीं, और ये नमुची कोई बहुत प्रसिद्ध बहुत शक्तिशाली राक्षस नहीं था, वृत्रासुर की जगह तरह बलि महाराज जंभासुर की तरह, ये तो थोड़ी कम श्रेणी का राक्षस। तो इंद्र सोचने लगे इससे ये नहीं मर रहा तो फिर इसका क्या उपयोग है। तो ऐसे जब वो चिंतन कर रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई, इंद्र को बताया कि दरअसल नमुची को एक वरदान मिला है कि वो किसी भी गीले या सूखे अस्त्र से नहीं मरेगा। तो जो अस्त्र से मरेगा ना वो गीला होना चाहिए ना सूखा होना चाहिए, तो कुछ तो होगा एक अस्त्र, या तो पानी में डुबोएंगे तो गीला होगा सूख नहीं तो सूखा होगा, ऐसा कौन सा अस्त्र हो सकता है जो ना सूखा है ना गीला है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें अगर इसको मारना है तो कोई ऐसे अस्त्र का प्रयोग करो जो ना सूखा हो ना गीला। इंद्र सोचने लगे ऐसा कौन सा अस्त्र हो सकता है जो सूखा भी नहीं गीला भी नहीं। और बहुत देर चिंतन करने के बाद उन्होंने सोचा कि झाग, जो झाग होता है तो वो जो वो ना सूखा होता है ना गीला होता है झाग, क्योंकि झाग में कभी ऐसे हाथ भी चला जाए हल्की सी नमी होती है लेकिन वो सूखा भी होता है, हाथ को गीला नहीं, एकदम पानी की तरह गीला नहीं होता। तो उस समय इंद्र ने झाग का एक अस्त्र बनाया और उससे उस नमुची पर प्रहार किया और नमुची उससे मारा गया। हम लोग जब ये वर्णन सुनते हैं भागवतम में या अन्य शास्त्रों में कि कैसे अभी कोई झाग का एक अस्त्र बनाकर मार दिया, इससे नहीं मरेगा उससे नहीं मरेगा, हमें लगता है कल्पनाएं हैं, काल्पनिक कथा है। जैसे वो आजकल कार्टून्स में होते हैं, स्टोरीज बनाए जाते हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनती हैं, कल्पना होती है, वो एक सुपरमैन है एक बैटमैन है इत्यादि इत्यादि, वो ऐसे उड़ रहा है, ये सब कल्पना। दरअसल ये जो कल्पना करते हैं लोग वो भी इसीलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य में ये पहले होता था, लोग उड़ते थे हवा में, हवा में उड़ना कोई कठिन नहीं था, तो आज वो कल्पना रह गई। तो जिन चीजों को हम आज प्रत्यक्ष नहीं देख पाते वो हमारे लिए कल्पना मात्र है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य है। तो इंद्र ने नमुची को मार दिया, फिर नमुची भी मारे गए और फिर अब तो सारे जो देवता थे बड़े शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को काटना शुरू किया। तो जब ऐसे हो रहा था तो नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि नारद मुनि भक्त हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह अब दानव मारे जा रहे हैं, उनका कोई नेता नहीं है, उनको कोई रक्षा करने वाला नहीं है और देवताओं ने चारों ओर से घेर कर हर एक देवता ने मारना शुरू किया, अग्नि वरुण सब है मार रहे। तो नारद मुनि वहां प्रकट हुए और नारद मुनि ने देवताओं से कहा कि देखो आपको भगवान का रक्षण प्रदान है, जो भाग्य की देवी है वो आपको आपकी तरफ है, मतलब आपको विजय प्राप्त हो रही है, इसलिए अभी आप मारना बंद कर दो। अब आपको क्या चाहिए, आपकी विजय हो गई, भगवान ने आपको संरक्षण प्रदान कर दिया, आपको आपका राज्य वापस मिल गया, क्यों आप युद्ध क्यों मार रहे हैं उनको, छोड़ दो। तो नारद मुनि की बातों को मानकर देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया। देवताओं के गुणों में से एक गुण है ऋषि मुनियों की बातों को स्वीकार करना, भक्तों की बातों को स्वीकार करना, ये देवताओं का एक गुण है। तो जो भी नारद मुनि ने, हालांकि वो कह सकते थे कि नारद मुनि को नहीं, अगर इनको छोड़ेंगे ये लोग फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, मार डालना चाहिए खत्म करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, स्वीकार किया ऋषि मुनियों की। ये सभ्य पुरुष के लक्षण हैं। दरअसल ये लक्षण हम लोग पहले असुरों में भी देखते थे, ऋषियों का अपमान नहीं होता था, चाहे कितना ही बड़ा शक्तिशाली राजा क्यों ना हो। रामायण में कथा आती है सहस्त्र अर्जुन की, सहस्त्र अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, हाँ घमंड भी हो रहा था उसको अपनी शक्ति का, लेकिन पहले बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसने एक बार रावण को बंदी बना लिया। रावण उससे युद्ध करने आया, त्रिलोकेश्वर रावण, रावण का काम था सब जगह जाता था चुनौती देता था राजाओं को, मुझसे युद्ध करो नहीं तो मेरी अधीनता स्वीकार करो। सहस्त्रार्जुन को आकर भी कहा, सहस्त्रार्जुन क्रोध में आ गया, युद्ध हुआ और फिर उसने बंदी बना लिया रावण को, रावण त्रिलोकेश्वर जेल में डाल दिया, रावण कुछ नहीं कर पाया, इतना शक्तिशाली था। और वो जानता था कि रावण सारी जगह में उत्पात मचा रहा है, इसलिए उसने जेल में डाल दिया, तुम अंदर ही बैठे रहो, कोई उत्पात नहीं होगा। और उस समय पुलत्स्य ऋषि आए। पुलत्स्य ऋषि ये रावण के वंशज हैं, रावण उनके वंश में आते हैं आगे। तो पुलत्स्य ऋषि आए, ये सहस्रार्जुन जो इतना वीर था, जिसने रावण को बंदी बना लिया, उसने स्वागत किया उनका और पूछा कहीं आप आए हैं, कोई कारण होगा। पुलत्स्य ऋषि ने इतना ही कहा कि रावण जानता हूं कि ये कार्य राक्षस का कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि इसको छोड़ दो। और सहस्रार्जुन ने एक शब्द नहीं पूछा, कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं कि अरे आप किसको छुड़वाने आए हैं, जानते हैं कितना उत्पात कर रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत छोड़ दिया रावण को सहस्रार्जुन ने। तो ये हम लोग देखते हैं कि जैसे ही नारद मुनि ने आकर कहा तो देवताओं ने तुरंत युद्ध करना बंद कर दिया कि ठीक है आप कहते हैं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भक्ति मार्ग में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भले हमें भगवान का संरक्षण प्राप्त हो, जैसे देवताओं को था, कितनी ऊंची अवस्था है भक्ति की, आप सोचिए, जिनके लिए स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं जिनकी रक्षा करने के लिए। हम लोग तो चिल्लाते रहते, पुकारते रहते, भगवान नहीं आते हैं, लेकिन वहां स्वयं प्रत्यक्ष भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं, मतलब कितनी ऊंची स्थिति है उनकी। लेकिन उस स्थिति में भी नियम ये है कि जब भक्त आकर कहते हैं नारद मुनि जैसे, तो चुपचाप स्वीकार करना, क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न करता है। कभी कभी आदेश जो मिलते हैं वो साधारणता अलग लगते हैं, उल्टे लगते हैं। जैसे इस आदेश को नारद मुनि ने आदेश दिए, ये गलत लग रहा है कि अरे क्यों छोड़ना है शत्रु को, मारना चाहिए। लेकिन जब आदेश का पालन होता है तो जो उसका लाभ मिलता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार भक्ति में भी नियम यही है कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें, फिर वो आदेश हमें ठीक लगे या ना लगे, लेकिन अगर आदेश है, अगर हम उसका पालन करते हैं, तो भले हो सकता है हमें इस जीवन में कुछ कष्ट हो, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सभी देवताओं ने इसको स्वीकार कर लिया और फिर सब वहां से चले गए। नारद मुनि ने जितने भी दैत्य दानव थे उनको कहा कि आप इनको उठाकर ले जाइए, तो बलि महाराज इत्यादि को उठाकर लेकर गए। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उनको पुनः जीवित कर दिया, उन सबको। ऐसा वर्णन है कि जिनके शरीर क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, इधर उधर कटफट के खत्म नहीं हो गए थे, उन सारे लोगों को पुनः जीवित कर दिया। तो बलि महाराज को भी किया, और फिर बलि महाराज का एक गुण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही बलि महाराज चेतना में आए, उनको पता चला संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया गया, और उनको सब पता चला कि क्या हुआ युद्ध में, हम लोग कैसे बुरी तरह हार गए और कैसे मुझे मारा, बाद में और असुरों को मारा, तो उस समय भी वो विचलित नहीं हुए। ये वर्णन है कि जब उनको पता चला तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, और फिर उन्होंने शुक्राचार्य जी को अपने गुरु के रूप में, वैसे भी गुरु थे मगर और कृतज्ञता से अब उन्होंने उनको स्वीकार किया, क्योंकि पुनर्जन्म पुनर्जीवन शुक्राचार्य जी ने उनको प्रदान किया था। तो ऐसे बलि महाराज फिर से पुनः जीवित। अब आगे के कुछ अध्यायों में, अभी एक दो अध्याय के बाद ही बलि महाराज की कथा फिर प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि भगवान के एक बहुत सुंदर अवतार वामन देव का वर्णन होने वाला है, तो इसीलिए फिर से बलि महाराज आएंगे। तो बलि महाराज को पुनर्जीवित कर दिया। तो ये 11वें अध्याय में वर्णन है। 12वें अध्याय में बड़ा विचित्र वर्णन है। शिवजी ने सुना, सब हो गया, देवता चले गए, समुद्र मंथन हुआ, लेकिन शिवजी ने सुना कि उस समय भगवान ने एक मोहिनी अवतार लिया था, एक स्त्री का अवतार लिया था, और शिवजी ने कभी वो अवतार देखा नहीं था। बाकी सारे अवतार भगवान के वो देख चुके हैं, लेकिन ये अभी अभी हुआ था, सुना, कभी भगवान ने स्त्री का रूप ही नहीं लिया था। तो शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए और अपनी पत्नी को और अपने गणों को लेकर वहां गए जहां पर भगवान थे, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें शिवजी भ्रमित हो जाते हैं। तो शिवजी गए भगवान के पास, उन्होंने पहले भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कि आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही इसको चलाते हैं और आप ही इसका संहार करते हैं। अर्थात शिवजी अपनी स्थिति जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो संहार करता है, वो जानते हैं कि शक्ति भगवान से आती है। भगवान के अवतारों में गुण अवतार होते हैं, सत्व गुण के अवतार विष्णु कहलाते हैं और रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी और तमोगुण के अवतार शिव जी। तो इसीलिए रजोगुण ये प्रकट करता है, ये सृष्टि करता है, तो ब्रह्मा जी बनाते हैं और सत्वगुण संभालता है तो विष्णु संभालते पालन करते हैं। ये लक्षण है सत्वगुण के, पालन करना सृष्टि करना रजोगुण का लक्षण है, पालन करना सत्वगुण का लक्षण है और संहार करना ये तमोगुण का लक्षण है। तो शिवजी संहार करते हैं, लेकिन शिवजी ये जानते हैं कि ये सारी शक्ति आती भगवान से, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही सारी सृष्टि के रचयिता पालनकर्ता और संहार करता हैं, लेकिन आप कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अधीन नहीं आते हैं, आपको ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और फिर आगे वो प्रार्थना करते हैं कि आपके जो भक्त हैं वो भौतिक चीजों से पूर्ण रूप से अनासक्त रहते हैं, आपसे आसक्त होते हैं, इसीलिए केवल आपकी सेवा करते हैं। अर्थात भगवान की सेवा के ये दो गुण शिव जी बता रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा करनी है तो दो गुण होने चाहिए, एक भौतिक जगत से अनासक्ति और कृष्ण से आसक्ति। और फिर वो कहते हैं कि आपके कई रूप हैं, कई लोग आपको अलग अलग रूप में जानते, कोई आपको ब्रह्म के रूप में जानता है, जो ब्रह्मवादी होते हैं वो कहते हैं पूर्ण सत्य केवल ब्रह्म है, और कई लोग आपको धर्म के नाम पर जानते हैं कि धर्म ही भगवान है, कई लोग आपको अन्य रूपों में जानते हैं, कोई आपको इस सृष्टि के परे मानते हैं और कोई आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। तो आपके अलग अलग रूप हैं। और फिर शिव जी कहते हैं कि मैंने आपके बहुत जितने भी अवतार हुए हैं वो देखे हैं, लेकिन मैंने सुना आपने अभी अभी स्त्री का मोहिनी अवतार लिया, वो मैंने नहीं देखा, मेरी इच्छा है, हम लोग सब यहाँ पर आए हैं, मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि शिव जी चले गए थे विष का पान करके, वहां रुके नहीं थे, तो मैं अब देखना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे उस अवतार को दिखाइए। तो ये प्रार्थना उन्होंने की। तो सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान ने जब ये सुना तो भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो ये जान लेना चाहिए कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, भगवान ऐसे ही नहीं मुस्कुराते। तो भगवान मुस्कुराए किस लिए? भगवान ये सोच रहे थे कि शिवजी धीर पुरुष हैं, शिवजी को धीर पुरुष कहा जाता है, धीर मतलब जो किसी चीज से विचलित नहीं होता, देह के बदलने से विचलित नहीं होता, सुख दुख से विचलित नहीं होता, काम वासनाओं से विचलित नहीं होता। इनका वर्णन किया गया है कि जिस समय, एक समय शिवजी तपस्या कर रहे थे और पार्वती देवी इनके, उस समय देवताओं को आवश्यकता थी एक सेनापति की, जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था तो उस समय शिवजी को जाकर विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी विचलित नहीं हुए। तो नारद मुनि कहते ये धीर पुरुष हैं, इतनी सुंदर स्त्री पार्वती जी जिनको विचलित करने का प्रयास कर रही हैं लेकिन वो अपनी तपस्या से नहीं डिगे हैं, जिनको कामदेव ने प्रयास किया, एक समय कामदेव आए थे और उनके ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया, शिवजी ने उनको जला दिया देख करके वह, तो जिनको कामदेव प्रभावित नहीं कर पाए, अब भगवान ये सोच रहे हैं कि कैसे इनको मोहित करना है, कैसे इनको प्रभावित करना है। तो ऐसा रूप होना चाहिए जिससे शिवजी प्रभावित हो जाएं। और शिवजी दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि मुझे मोहिनी रूप से क्या फर्क पड़ेगा, अरे इतने सारे देवताओं ने देखा, देवता तो विचलित नहीं हुए। इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया तो देवता भी उनके पीछे पागल हो गए? नहीं, देवता पता, ये तो भगवान है, वो अपना आराम से खड़े थे, लेकिन जितने दानव थे वो एकदम कामुक होकर भाग रहे थे कि अरे ठीक है तुम लो, तुम बांटो सबको, देवता नहीं हुए थे। तो शिव जी सोच रहे कि जब इतने सारे देवता उस मोहिनी रूप को देखकर विचलित नहीं हुए, फिर मैं तो महादेव हूं, देवों का देव, मैं कैसे विचलित होऊंगा, तो इसलिए मुझे देखना है। और भगवान ये सोच रहे हैं कि ये शिव जी को कैसे विचलित करना है, ये तो बहुत बड़े धीर हैं। तब देखिए दोनों में प्रतियोगिता, शिव जी सोच रहे मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान करे इनको तो करना है पक्का। तो उस समय भगवान कहते हैं शिव जी से कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं आपको मोहिनी अवतार दिखाता हूं, जो कामी पुरुषों के लिए, जिनके हृदय में काम वासना है, बड़ा आकर्षक रूप है कामी पुरुषों के लिए। खास करके उन्होंने कहा आप कामी नहीं है लेकिन आप भी इसके पीछे भागने वाले हैं। तो भगवान ने ऐसा कहा और भगवान ने बड़ा विचार करके अब ऐसा रूप प्रकट किया जो पहले देवताओं को मोहित नहीं कर सका था, लेकिन अब शिव जी को मोहित कर देगा। तो भगवान वहां से गायब हो गए, शिव जी देख रहे हैं इधर उधर, अरे कहां गए? और अचानक थोड़े समय बाद शिव जी ने देखा कि वहां जंगल में एक बहुत सुंदर स्त्री गेंद से खेल रही है, तो और खेल रही है तो उसके शरीर को शिव जी देखने लगे। बहुत सुंदर थी, इतने सुंदर कि शिव जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, गणों के साथ बैठे हैं, ऐसा नहीं था कि अकेले थे जंगल में तो स्त्री को देख लिया, सब हैं लेकिन शिव जी का पूरा ध्यान उस स्त्री की ओर, और कैसे वो चल रही है, कैसे वो खेल रही है, कैसे उसके शरीर के अंग हैं, शिव जी ये सब देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? धीर पुरुष शिव, जो अपनी तपस्या से कभी नहीं दिखते, अब जब वो खेलने लगी तो उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसकी जो गेंद है कहीं चली गई, वो उठाने के लिए भागी, तो ऐसा वर्णन है कि उसके शरीर के जो वस्त्र थे वो थोड़ा सा हवा आई तो इधर उधर हो गए। शिव जी ने उसके शरीर को देख लिया, अब शिव जी से रहा नहीं गया और शिव जी भागे उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागे। आप सोचिए कोई भी सभ्य पुरुष होगा, शिव जी की तो बात बहुत दूर है, कोई भी सभ्य पुरुष अपनी पत्नी अपने अनुयायियों के सामने ये काम नहीं करेगा। अगर उसे करना भी है तो जब पत्नी नहीं होगी, कहीं अकेला होगा या कोई उसको देख नहीं रहा होगा, तब हो सकता है ये काम कर ले। लेकिन यहां तो उनके गण खड़े हैं, गण कौन है? जो शिव जी को भगवान मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, वो खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी है जो सारे जगत के लोगों के लिए बहुत आकर्षक है, पार्वती देवी या उमा देवी या जो भी कहा जाए भवानी, ये तो भगवान की शक्ति है, माया शक्ति जो सभी लोगों को मोहित करती हैं, वो शिव जी को मोहित नहीं कर पाई, तो वो खड़ी हैं, सब खड़े हैं उनके पीछे, सामने शिव जी भागे और भाग कर गए। और उन्होंने वहां से, उस स्त्री जा रही थी मोहिनी अवतार, बालों से खींचा और उसको आलिंगन कर लिया शिव जी ने सबके सामने। और फिर ये मोहिनी अवतार इसने जैसे कि बहुत, वो भी प्रसन्न हो रही है, ऐसा नहीं कि वो पहले भी हंस रही थी, शिव जी की ओर देख रही थी, शिव जी को आकर्षित कर रही थी, और फिर वो छूट कर भागी उनसे और शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं निर्लज्ज होकर कोई उनको लज्जा नहीं कि अरे लोग देख रहे हैं क्या होगा मेरे ही गण, जैसे ब्रह्मा जी भागे थे, हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी जब उन्होंने प्रकट अपनी ही पुत्री के पीछे भागने लगे, वहां उनके पुत्र खड़े हैं, सब कह रहे हैं ब्रह्मा जी को अरे क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे शिव जी अब भाग रहे। तो बहुत वो भागने लगी स्त्री इधर उधर, और फिर वो, और बारंबार वो बहुत जगहों पर गई, ऐसा वर्णन है कि कई जगहों पर गई। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान खास करके उन जगहों पर भाग रहे थे, शिव जी पीछे पीछे और वो आगे भाग रही है मोहिनी, उन जगहों पर जहां ऋषि मुनि बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, अचानक कोई भागते हुए आए, उन्होंने देखा अरे शिव जी क्यों भाग रहे स्त्री के पीछे, ये क्या हो गया शिव जी को, क्योंकि उनके लिए तो आराध्य है शिव जी। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान जानबूझ के उस जगह पे जा रहे थे दिखाने के लिए कि देखो ये तुम्हारे भगवान, ये तुम्हारे शिव जी, क्या स्थिति है इनकी, तो जान मुझ के वो ऋषियों के बीच में से भाग रहे और सारे ऋषि तपस्या छोड़कर देख रहे ये क्या हो गया, एक शिव जी क्यों भाग रहे, अरे अरे शिव जी आराध्य देव, और शिव जी किसी की नहीं सुन रहे। देखिए ये तो शिव जी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कामुक हैं, लेकिन इसके द्वारा एक चीज बहुत प्रकट की जाती है कि इस जगत में जब व्यक्ति की काम वासना बहुत बढ़ जाती है तो वो अंधा हो जाता है, जैसे शिव जी हो गए, अंधा हो गया, कुछ नहीं देख रहा। आप सोचिए कि जो ऋषिगण शिव जी की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनसे कुछ प्राप्त कर, उनके सामने वो भाग रहे हैं, अंधा हो जाता है व्यक्ति काम वासना में। और जब काम वासना में अंधा होता है तो उसको अच्छे बुरे की जो समझ है वो चली जाती है, काम वासना बड़ी तीव्र होती है। इसीलिए इस जगत में प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा बंधन है काम वासना, स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है ये सबसे बड़ा बंधन है इस जगत का। इसीलिए प्रभुपाद इन जहां पर शिव जी ये भाग रहे, प्रभुपाद लिखते व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, काम वासना को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना इस जगत को छोड़ना असंभव है। कई बार लोग सोचते हैं हम भक्ति भी करते रहें, भगवान की पूजा भी करते रहें और साथ साथ में काम वासना का आनंद भी लेते रहें, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, असंभव है, क्योंकि ये एक बंधन है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला बंधन, और ये बांधता है व्यक्ति को बहुत तीव्रता से। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ये एक चीज को हमें बहुत संभालना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जो स्पर्श से संस्पर्श जाप होगा, ये जो स्पर्श से उत्पन्न भोग है, इसको यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय एवते, केवल दुख देने वाला है। आद्यंतवंत कौन्तेय, इसका आदि है और इसका अंत है, हे कौन्तेय जो बुद्धिमान लोग हैं बुधा, न तेषु रमते, वे लोग इसमें रमण नहीं करते। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो वैसे आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो शाश्वत है। तो अब शिव जी को लेकर भगवान भाग रहे हैं ऋषि मुनियों के बीच से, जंगलों से, पर्वतों से, और भाग रहे शिव जी पागल की तरह, और इतना भागे, इतना कामुक हो गए, इतनी काम वासना बढ़ गई कि उनका वीर्य पतन हो गया। और तब शिव जी एकदम अपनी चेतना में वापस आए, और शिव जी वापस आकर उन्हें दुख नहीं हुआ, ये देखिए प्रसन्नता की बात। ऐसा नहीं हुआ कि शिव जी सोचने का हाय हाय मैंने क्या किया, मैं क्या पागलों की तरह भाग रहा था, अपने ही गणों के सामने, ऋषि मुनियों के सामने मैं एक स्त्री के पीछे भाग रहा था, कितने दुख की बात। बिल्कुल दुख नहीं हुआ शिव जी को, क्यों? उन्हें प्रसन्नता हुई भगवान से परास्त होने में। उन्होंने कहा हां केवल भगवान ही है जो माया के परे, तो मैं परास्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए ये भक्त है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान ने अपनी माया से मुझे परास्त कर दिया, मैं अब भगवान को दिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बड़ी प्रसन्नता। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मांडुक्य ऋषि, उन्होंने एक दिन भगवान से प्रार्थना की मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं, भगवान ने कहा देख नहीं पा, नहीं नहीं देखना चाहता हूं, तो ठीक है। भगवान ने माया के दर्शन कराए, जहां बैठे हैं अचानक वहां पर पानी बढ़ने लगा, प्रलय आ गया, कई वर्षों तक प्रलय के जल में घूम रहे हैं, फिर अचानक एक उनको द्वीप दिखाई दिया, फिर उस द्वीप पर गए तो एक छोटा सा बालक दिखाई दिया जो अपने ही अंगूठे को, घुटने के अंगूठे को पांव मुंह में डालकर चूस रहा है, एक पत्र पर है, पत्ते पर, वटवृक्ष के। तो ये दृश्य देखकर बड़े आश्चर्य में, और फिर उस बच्चे ने अंदर सांस ली सारा जल, और मांडुक्य ऋषि खुद अंदर चले गए उसके, फिर उसने बाहर की, सब बाहर आ गए, मांडुक्य ऋषि को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, और थोड़े समय बाद देखा जहां बैठे वहीं बैठे हुए थे, जहां बैठकर तपस्या कर रहे हैं वहीं आश्रम में है। तो मांडुक्य ऋषि को तब पता चला रही ये भगवान की माया है, ऐसे घुमा के भगवान ने सब लाकर पटक दिया वापस। तो ऐसे भगवान मोहित करते हैं। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज भगवान से वो परास्त हो गए, भगवान की शक्ति से वो परास्त हो गए, इसीलिए उन्हें प्रसन्नता हुई। और फिर वर्णन है कि जहां जहां जब शिव जी भाग रहे थे, जब वीर उनका गिरा, तो जहां पृथ्वी पर भूलोक में जहां भी गिरा वहां सोने और चांदी की खाने बन गई, सोने की खान बन गई स्वर्ण। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जितने भी शिव जी के अनुयायी हैं वो शिव जी से केवल सोना चांदी मांगते हैं। हालांकि शिव जी खुद शमशान में रहने वाले वैरागी हैं, लेकिन लोग उनसे, जितने भी उनके भक्त हैं शिव जी के, वो बड़े अमीर होते हैं। शिव जी के भक्त बहुत पैसा होता है उनके पास, और कृष्ण के भक्त सुदामा फटेहाल रहते हैं। ये प्रश्न आगे चलकर हम लोग जब आएंगे 10वें स्कंद में शायद, ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने शिवदेव गोस्वामी से किया कि ऐसा क्यों होता है कि शिव जी के जितने भक्त हैं बड़े धनवान हैं और कृष्ण के सारे भक्त गरीब हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका उत्तर आगे आएगा। तो ऐसे शिव जी फिर बड़े प्रसन्न हुए भगवान के दर्शन करके, फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। वो अपनी पत्नी को कहते हैं शिव जी कि देखो, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो भगवान के अंश हैं, अगर मेरे जैसा व्यक्ति भगवान की माया से प्रभावित हो सकता है, तो फिर साधारण लोगों का कहना ही क्या। अर्थात भगवान ने ये जो लीला की, ये दिखाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में माया के परे नहीं है। हालांकि शिव जी का गुणगान किया, जब मोहिनी अवतार हटा लिया भगवान ने, भगवान प्रकट हुए फिर से शिव जी के सामने, और उन्होंने गुणगान किया शिव जी का कि आप कभी माया में नहीं आ सकते और आप हमेशा तीन गुणों के परे रहेंगे। भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि आप कभी माया में नहीं आएंगे, और ये स्वाभाविक है, उनकी पत्नी ही माया है, उससे प्रभावित नहीं होते वो। लेकिन शिव जी कहते हैं कि देखो, ये बात तो भगवान क्यों मोह में डाला शिव जी को, क्यों भगाया अपने पीछे, दो कारणों से। एक कारण ये दिखलाने के लिए, जैसे शिव जी बता रहे हैं अपनी पत्नी को कि ये दिखाने के लिए कि अगर मैं मोह में आ सकता हूं तो कोई भी आ सकता है। तो ये हमें जानना चाहिए कि कोई भी माया से परे नहीं है, इसलिए अपने आप को कभी बहुत माया के सामने शक्तिशाली नहीं मानना चाहिए हमें। और दूसरी चीज, वो किसके पीछे भाग रहे थे? भगवान के पीछे। ये तो जीवन की पूर्णता है। भगवान के पीछे निर्लज्ज होकर भागना, ये जीवन की पूर्णता है। इसलिए जो शिव जी ने किया वो गलत नहीं है, वो तो भगवान के पीछे भाग रहे हैं, भगवान से आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा आकर्षण ये जीवन की सफलता है। तो इस तरह शिव जी ने अपनी पत्नी को बतलाया कि कैसे ये हुआ। और फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी इस पूरे प्रसंग का फल, श्रुति फल बताते हैं कि फल श्रुति इसकी क्या है। तो वो कहते हैं कि जो भी ये पूरे समुद्र मंथन की लीला को सुनते हैं बारंबार, तो निश्चित उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, और जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी इस कथा को समाप्त करते हैं और परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आपने जो भी पूछा था मैंने आपको बता दिया। तो अब अगले अध्याय में वो आगे आने वाले मनुओं का वर्णन करेंगे। तो पहले हम लोग सुन चुके हैं कि 14 मनु हैं, तो अब मनुओं का वर्णन होगा, और फिर आगे उसके अगले अध्याय से वामन देव के अवतार की कथा प्रारंभ होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरी। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस।